जैसे कि हम लोगों का जो लास्ट सेशन में टॉपिक था वो था हाउ साइकोलॉजी स्टडी, जिसमें हम लोगों ने ये जानने की कोशिश की थी कि जब भी हम रिसर्चेस करते हैं या थ्योरीज बनाते हैं तो एक्चुअली में साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो थ्योरीज को या रिसर्चेस को कैसे कंडक्ट करते हैं। हमने बात करी थी कि एक हम लोग बात करते हैं कि एक जनरल आप साइकोलॉजी का थ्योरी बनाते हो, एक आप अप्लाइड रिसर्च करते हो जिसमें जो थ्योरीज हैं उनको आप एक्चुअली में इम्प्लाई करते हो इन द प्रैक्टिकल सेटिंग। फॉर एग्जाम्पल कि आप क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट बनते हो तो जो थ्योरीज आपने पढ़ी हैं उनको आप जाके पेशेंट को ट्रीट करने के लिए जो है वो यूज़ करते हो। साथ ही साथ हमने पढ़ा था कि किस किस तरह के मेथड्स होते हैं, जैसे हमने बात की थी ऑब्जर्वेशन मेथड की और सर्वे मेथड की, इंटरव्यू टेक्निक की, केस स्टडीज़ की, कि किस तरह से हम लोग जो हैं वो डाटा कलेक्ट करते हैं, कौन से टूल्स हम लोग यूज़ करते हैं। और हम लोगों ने एथिकल प्रिंसिपल्स की भी बात करी थी कि जब भी कोई क्लाइंट हमारे पास आता है तो क्या एथिकल प्रिंसिपल्स हमको फॉलो करने पड़ते हैं। इसके साथ ही में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है हाउ साइकोलॉजी स्टडी, वो आता है कि स्टैटिस्टिक्स। जो लोग साइकोलॉजी की जानकारी रखते हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि वो स्टैटिस्टिक्स की जानकारी उन्हें होना भी ज़रूरी है। उसका रीज़न ये है कि जैसे हम डाटा कलेक्ट करते हैं तो डाटा कलेक्ट करने के लिए एक सेट फॉर्मूला लॉजिक होता है जो लगाना पड़ता है, तो दैट वी डू विद द हेल्प ऑफ स्टैटिस्टिक्स। अब वो हम किससे करते हैं इसी बात पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो वैसे तो स्टैटिस्टिक्स जो है वो मैथमेटिक्स की ब्रांच है, लेकिन क्योंकि ये कलेक्शन एंड क्लासिफिकेशन एंड डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ डाटा, क्वांटिटेटिव डाटा, क्योंकि हम लोग डाटा कलेक्ट करते हैं, क्वालिटेटिव भी करते हैं, क्वांटिटेटिव भी करते हैं। थोड़ा सा मैं आपको डिफरेंस बता देती हूँ। क्वालिटेटिव डाटा का मतलब होता है, फॉर एग्जांपल मैं आपका इंटरव्यू लूँगी, तो जब मैं आपका इंटरव्यू लूँगी तो या मैं आपको सिर्फ ऑब्जर्व करूँगी तो जो भी मैं अपनी रिपोर्ट लिखूँगी वो एक डाटा जो होगा वो एक क्वालिटेटिव डाटा होगा कि मैं सिंपली जो आपने जो मुझे बताया वो चीज़ मैं लिख रही हूँ, तो दैट इज़ अ क्वालिटेटिव डाटा। क्वांटिटेटिव डाटा होता है जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चनियर दे दिया, उस क्वेश्चनियर पे आपने आंसर्स आपने दिए और एक स्कोर आया उस क्वेश्चनियर से। फॉर एग्जांपल वो कोई भी स्कोर होता है कि जैसे मैक्सिमम स्कोर जो है किसी क्वेश्चनियर पे, जैसे फॉर एग्जांपल कोई जॉब सेटिस्फेक्शन का या टेस्ट एनजाइटी का स्कोर है तो मैक्सिमम स्कोर आपके आंसर्स का जो है वो 40 आना चाहिए, तो आपका मैक्सिमम 40 आना चाहिए, आपका 30 आया स्कोर या आपका 20 आया या आपका 15 आया, तो ये जो आपका आंसर्स के बेसिस पे जो स्कोरिंग आया दैट इज़ अ क्वांटिटेटिव डाटा, मेरे पास कोई क्वांटिटी आई, ठीक है। तो जब भी हम स्टैटिस्टिक्स की बात करते हैं तो स्टैटिस्टिक्स हमको इस बात में हेल्प करता है कि वो जो हम स्कोर्स लेके आते हैं उन स्कोर्स को हम किस तरह से यूज़ कर सकते हैं टू मेक इंटरप्रिटेशंस और टू ड्रॉ कंक्लूजन्स फ्रॉम ऑफ द बिहेवियर। तो हम लोग दो तरह का स्टैटिस्टिक्स यूज़ करते हैं, एक होता है डिस्क्रिप्टिव डिस्क्राइबिंग अ बिहेवियर और एक होता है प्रिडिक्टिंग अ बिहेवियर, कि एक तो हम सिर्फ डिस्क्राइब करेंगे बिहेवियर। फॉर एग्जांपल अगर कोई जो चाइल्ड है वो कैसे बिहेव करता है अपने मदर के साथ, तो वो अपनी मदर की कोई बात नहीं मानता है और वो बहुत एग्रेसिव है और वो बहुत अटेंशन सीकिंग है, बहुत इधर उधर भागता है, फोकस नहीं रहता है, तो यू आर डिस्क्राइबिंग द बिहेवियर ऑफ द चाइल्ड। नाउ ऑन द बेसिस ऑफ दैट डिस्क्रिप्शन यू कैन ऑल्सो प्रिडिक्ट द बिहेवियर कि अगर वो बच्चा क्लासरूम में जाएगा तो वो क्लासरूम में किस तरह से जो है वो बिहेव करेगा। तो हम लोग जब साइकोलॉजी में बात करते हैं तो साइकोलॉजी में स्टैटिस्टिक्स को हम यूज़ करते हैं, एक तो किसी भी बिहेवियर को डिस्क्राइब करने के लिए और दूसरा हम प्रिडिक्ट करते हैं कि अगर इस तरह का किसी का बिहेवियर रहेगा तो वो फ्यूचर में किस तरह से जो है वो बिहेव कर सकता है। जब स्टैटिस्टिक्स को हम व्हेन वी यूज स्टैटिस्टिक्स फॉर डिस्क्राइबिंग द बिहेवियर कि किस तरह से हमने डिस्क्राइब करना है, तो हम लोग डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स यूज़ करते हैं। और जब हम किसी डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स को यूज़ करते हैं एक्सप्लेनिंग बिहेवियरल, तो हम ये तो होता है कि डिस्क्राइब करना। इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स वो होता है जिसमें हम बिहेवियर को एक्सप्लेन करते हैं, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर कोई बच्चा ऐसे से या बच्चा कैसे बिहेव करता है, दैट इज़ अ डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स। अब वो बच्चा जब क्लास में जाएगा तो भी वो ऐसा बिहेव करेगा, तो वी आर मेकिंग एन इन्फ्रेंस फ्रॉम द डिस्क्राइब्ड बिहेवियर। तो जब हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, तो जब हम किसी भी बिहेवियर को एक्सप्लेन करेंगे तो हम इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स यूज़ करेंगे। डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो होती है दैट इज दे आर द नंबर्स विच आर ऑफन यूज टू डिस्क्राइब अ वेरिएबल. जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ मेजर डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स जो होती है वो हम मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी लेते हैं मीन मीडियन मोड के हेल्प से. हम लोग बताते हैं कि दिस इज द डाटा एंड वी कैन डिफाइन द मीन मीडियन मोड एंड थ्रू दैट वी कैन डिस्क्राइब द बिहेवियर. और दूसरा इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स होता है जो कि जनरलाइजेशन अबाउट द पॉपुलेशन. जैसे कि अगर बच्चे इस तरह से बिहेव करते हैं, अगर 10 बच्चे इस तरह से बिहेव करते हैं तो दैट मींस हम जनरलाइज कर रहे हैं कि आजकल के बच्चों में ये वाली टेंडेंसीज हैं. जैसे कि हम लोग एडोलेसेंट्स की अगर बात करते हैं तो एडोलेसेंट्स किस तरह से बिहेव करते हैं, हम फिर उसका एक जनरलाइजेशन कर देते हैं कि अगर 15 साल के ग्रुप के 10 बच्चे या फिर 100 बच्चे इस तरह से बिहेव कर रहे हैं तो हम जनरलाइज कर सकते हैं कि और बच्चे भी इसी तरह से बिहेव करेंगे. दैट इज़ वी आर प्रिडिक्टिंग दैट. दैट इज इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स. अब स्टैटिस्टिक्स का फंक्शन मेनली तो ये है कि जो आपने डाटा लिया है उस डाटा और इन्फॉर्मेशन को आप ब्रीफली कैसे प्रेजेंट करते हो. ठीक है, आप ब्रीफली आप प्रेजेंट कर दो कि इसका इतना मीन आ गया, इसका इतना मीडियन आ गया, इसका मोड आ गया, आगे हम समझेंगे. एक तो उसको ब्रीफली आपने कैसे एक्सप्लेन करना है. जो दूसरा है वो ये है कि जो भी आपने रिजल्ट ऑप्टेन किए हैं वो एक्यूरेट रिजल्ट होने चाहिए और ऑब्जेक्टिव होने चाहिए. ऑब्जेक्टिव का मतलब आप ऐसा करते हैं, हाँ मैं करता हूँ, आप ऐसा नहीं करते, नहीं करता हूँ, येस और नो, मतलब इट इज ऑब्जेक्टिव, देयर इज नो बायसिंग, कोई बायस्ड नहीं है. जैसे कई बार हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोग क्वालिटेटिव रिसर्च की बात करते हैं तो उस पर कई बार बायस हो जाते हैं. जैसे बायस्ड में इस चीज से हो सकती हूँ कि आप मेरे पास आते हैं इंटरव्यू में और मैं आपका इंटरव्यू इज अ टेक्निक फॉर क्वालिटेटिव डाटा. तो अगर इंटरव्यू में आपका लूंगी तो जब मैं रिपोर्ट राइट करूंगी तो क्या पता मैं अपने इमोशंस भी उस रिपोर्ट राइटिंग में डाल दूं या मैं किस तरह से इन्फ्लुएंस्ड हूँ. लेकिन जब हम क्वांटिटेटिव डाटा की बात करते हैं, क्वांटिटेटिव मतलब नंबर्स, जब हम नंबर्स में डाटा कलेक्ट करते हैं तो वो ऑब्जेक्टिव रिजल्ट्स हैं, इसलिए हम क्वांटिटेटिव डाटा और स्टैटिस्टिक्स यूज़ करते हैं. दूसरा, जब हम डाटा को एनालाइज करते हैं, मतलब जब हम उससे कुछ कंक्लूजन्स निकालते हैं तो वो ज़्यादा साइंटिफिक और लॉजिकल मैनर में, साइंटिफिक मैनर में होता है. और कंपैरेटिव स्टडीज़ जो होती हैं वो भी इससे इजी हो जाती हैं. हम कंपेयर कर सकते हो विद डिफरेंट स्टडीज़, सिमिलर स्टडीज़ और डिफरेंट स्टडीज़ की जो आपका रिजल्ट्स आया है वही किसी और ने भी वही रिजल्ट्स लाए हैं फॉर द सेम बिहेवियर. दूसरा, दो से ज़्यादा चीज़ों के बीच में आप जो है वो रिलेशनशिप जो है वो फाइंड आउट कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका टेस्ट एंजाइटी ज़्यादा बढ़ेगा तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो लूज आएगा. ठीक है, आप इस तरह से भी पता लगा सकते हैं. प्रिडिक्शंस जो हैं बिहेवियर की, वो भी जैसे मैंने आपको पहले बताया कि अगर कोई इस तरह से बिहेव कर रहा है तो वो फ्यूचर में कैसे बिहेव करेगा, वो भी हम जो है वो विद द हेल्प ऑफ दिस स्टैटिस्टिक्स यूज़ कर सकते हैं. तो ये फंक्शंस हैं स्टैटिस्टिक्स के. अब आता है कि कुछ बेसिक स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स हमको पता होने चाहिए कि बेसिक स्टैटिस्टिकल कॉन्सेप्ट्स क्या होते हैं. तो एक होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब है कि आपने अगर 25 बच्चों का स्कोर लिया, जो कि आपके लेसन में भी यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, 25 बच्चों का स्कोर मान लो कुछ एक आता है, जैसे 25 बच्चों का स्कोर आया, एक ने 10 नंबर लिए, एक ने 7 नंबर लिए, एक ने 6 लिए, दो बच्चों ने 5 नंबर लिए, दो बच्चों ने 6 नंबर लिए, एक ने 8 लिए, दो ने 8 लिए, एक ने 9 लिए, और 7 एक बच्चे ने 7 नंबर लिए, एक बच्चे ने 4 नंबर लिए. ठीक है, तो अब आपको इस डिस्ट्रीब्यूशन को देखना है तो आप ये देखोगे कि जो आपके बच्चे का क्लास में स्कोर आया है तो 11 इज़ द हाईएस्ट स्कोर, एक बच्चे ने 11 इज़ द हाईएस्ट स्कोर और लोएस्ट स्कोर जो है वो 3 आया है. अब इसी डिस्ट्रीब्यूशन को आप और प्रिसाइज वे में आप एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में भी डाल सकते हो. फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल में आपको पता चल जाएगा कि एवरेज जो है वो बच्चा जो है 6 से 8 के बीच में जो है वो स्कोर कर रहा है, क्योंकि ज़्यादातर बच्चों ने 6 नंबर या 8 नंबर ही लिए हैं. तो वो फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल की हेल्प से भी जो है हम लोग पता लगाते हैं, हम लोग डाटा को एनालाइज करते हैं, डाटा को प्रेजेंट करते हैं. दूसरा जो मेथड्स हैं कैरेक्टराइज करने के लिए डाटा को, वो है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, जिसमें हम बात करते हैं मीन मीडियन मोड की. मीन का मतलब है जैसे कि हम लोग रॉ स्कोर्स, कभी हम लोग जब क्रिकेट देखते हैं तो हम लोग क्रिकेट बोर्ड पे देखते हैं कि व्हाट इज़ दी मीन रन रेट, व्हाट इज़ द रन रेट फॉर द लास्ट ओवर एंड व्हाट इज़ द प्रिडिक्टेड रन रेट फॉर दिस ओवर. तो वो जो है वो हम मीन का फॉर्मूला लगा के जो है वो निकालते हैं. जैसे कि मीन का फॉर्मूला, जैसे कि हम लोगों ने अगर कोई हमारे पास स्कोर्स हैं, जैसे उन सब स्कोर्स को ऐड कर देंगे. अगर हमारे पास 5 स्कोर्स हैं, 5 स्कोर्स का मतलब है एक बच्चे के 10 नंबर, एक के 20 नंबर, एक के 30 नंबर, दूसरे के एक और बच्चे के 10 नंबर और एक और बच्चे के 20 नंबर. तो ये सब मार्क्स को हम ऐड करके डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो हमारे पास मीन आ जाता है, एवरेज लोग जो है वो कितना स्कोर कर रहे हैं तो वो पता चल जाता है. ये तो होता है मीन. मीडियन का मतलब होता है मिड वैल्यू, कि उसके ऊपर और उसके नीचे कितनी वैल्यूज़ हैं. जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है, तो जो 25 है दैट इज़ द मीडियन वैल्यू. 25 से नीचे भी 4 स्कोर्स हैं और 25 से ऊपर भी 4 स्कोर्स हैं. तो इट बिकम्स ईजी टू डिफाइन कि मिड स्कोर जो है वो आपका कितना आ रहा है. उसके ऊपर और नीचे आप बता सकते हो, या तो लोग 25 से ऊपर जाएंगे या 25 से नीचे जाएंगे. ठीक है. फिर आता है हमारा मोड. मोड का मतलब होता है कि व्हाट इज द ट्रेंड, लोग ज़्यादा किस तरफ जा रहे हैं. इसका आप एग्जांपल इस तरह से भी समझ सकते हो कि ज़्यादातर क्लास में बच्चे जो हैं वो एवरेज स्कोर कर रहे हैं. ठीक है. सारे ही बच्चों के जो हैं, अगर 10 में से मैं नंबर लूँ तो सारे ही बच्चों के 6.5, 7, 7.5 ऐसे नंबर आ रहे हैं. ठीक है. तो ये होते, दिस इज़ द ट्रेंड, कि ट्रेंड ये है कि बच्चे एवरेज ही स्कोर कर रहे हैं, या फिर ट्रेंड ये है कि बच्चे जो हैं वो कम स्कोर कर रहे हैं. आप इसको इस तरह से भी ले सकते हो. मोड क्या है, आजकल लोग जीन्स टॉप ज़्यादा पहन रहे हैं या साड़ीज और सूट ज़्यादा पहन रहे हैं. तो मोड ये होता है कि कौन सी चीज़ जो है वो बार बार जो है वो रिपीट हो रही है. फिर हम लोग बात करते हैं इस पे कोरिलेशन की. कोरिलेशन का मतलब होता है कि हम दो चीज़ों में जब हम लोग रिलेशनशिप निकाल सकते हैं, जैसे कि दो वेरिएबल्स का रिलेशनशिप आपस में कितना है, कि अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है. जैसे कि आपका अगर हैप्पीनेस बढ़ रही है तो पीस ऑफ माइंड भी बढ़ रहा है. तो हैप्पीनेस और पीस ऑफ माइंड के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है. या फिर अगर आपका आपका टेस्ट एंजाइटी बढ़ रहा है तो आपके स्कोर्स डाउन आ रहे हैं, तो दैट मीन्स दो चीज़ों के बीच में नेगेटिव रिलेशनशिप है. जब भी हम कोरिलेशन की वैल्यू निकालते हैं तो उसका जो आंसर होता है वो -1, 0, 2, 1, इन तीन नंबर्स के बीच में ही, या तो -1 होगा या -1 से लेके +1 तक जो भी वैल्यू होगी उसके बीच में ही इसका रिलेशनशिप जो आता है वो आता है. जैसे किसी के बीच में अगर हम कोरिलेशन निकालेंगे, या तो उनमें बिल्कुल स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन है. स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन का मतलब जितना स्ट्रेस हाई जाएगा उतना हैप्पीनेस लेवल कम आएगा. समझ रहे हैं? तो स्ट्रॉन्ग नेगेटिव कोरिलेशन है. वो कोरिलेशन जो होता है वो 0.9 भी हो सकता है, वो -0.9 भी हो सकता है, वो -1 भी हो सकता है, लेकिन वो -2 नहीं होगा या वो -1.2 नहीं होगा, क्योंकि वैल्यू जो होती है कोरिलेशन की -1, 0 to +1 के रेंजेस के बीच में ही एग्जिस्ट करती है. तो ये होता है कोरिलेशन. इस तरह से हम कोरिलेशन कोफिशिएंट जो है वो निकालते हैं, उसे आर से हम रिप्रेजेंट करते हैं. फिर लास्ट इसमें जैसे कि हमने बात की थी तो डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स थी. इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स क्या है? इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स, जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि आपने कोई डाटा लिया, उस डाटा के बेसिस पे आपके पास स्कोर्स आए. अब आपका कॉज इफेक्ट इन्फ्रेंस निकालना है कि ये क्यों हुआ. जो बेसिक जो टेस्ट यूज़ करते हैं इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स के लिए वो है टी टेस्ट या एफ टेस्ट, और भी बहुत तरह के टेस्ट हैं. टी टेस्ट का थोड़ा सा अगर मैं बताऊं तो टी टेस्ट का मतलब है कि हमारे पास दो मीन्स आ जाते हैं, फिर हम उन दोनों मीन्स को कंपेयर करते हैं, इन्फ्रेंस निकालते हैं कि इसका मीन ज़्यादा है. जैसे बॉयज़ ज़्यादा स्कोर कर रहे हैं मैथ्स में या गर्ल्स ज़्यादा स्कोर कर रही है मैथ्स में, तो दोनों का हम मीन ले लेंगे, गर्ल्स का भी मीन ले लेंगे, बॉयज़ का भी ले लेंगे, और कंपेरिजन करेंगे कि किसका ज़्यादा है, और फिर इन्फ्रेंसेस निकालेंगे कि ऐसा क्यों है. तो ये इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स है. और दिस वॉज द एंड ऑफ दिस लेसन. बट बिफोर आई एंड ऑफ दिस लेसन मैं थोड़ा सा इसको समराइज करूँगी, क्योंकि लास्ट टाइम हमने लिया था. एक तो हमने इसमें बात करी थी कि साइकोलॉजिकल स्टडीज़ का क्या गोल्स है, जिसमें हमने बताया था कि एक तो डिस्क्राइब करना है फिनोमेना, एक्सप्लेन करना है, प्रिडिक्ट करना है बिहेवियर, और अगर कोई बिहेवियर प्रॉब्लमेटिक है तो उसको कंट्रोल करना है. ये गोल है ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्चर्स. फिर हम लोगों ने बात की थी एक बेसिक रिसर्च होती है जिसमें हम लोग थ्योरीज को डेवलप करते हैं, और एक अप्लाइड रिसर्च होती है जिसमें वो डेवलप थ्योरीज या डेवलप नोशंस को हम अप्लाई करते हैं इन द प्रैक्टिकल सेटिंग. फिर हम लोगों ने बात करी थी कि एक्सपेरिमेंटल मेथड जो साइकोलॉजी में होता है वो कॉज इफेक्ट रिलेशनशिप की बात करता है, जिसमें हम लोगों ने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल की बात करी थी. इंडिपेंडेंट वेरिएबल का मतलब होता है एनी वेरिएबल विच इज़ इन द कंट्रोल ऑफ दी ऑफ द एक्सपेरिमेंटर, वो उसकी वैल्यू कितनी भी बढ़ा सकता है. और डिपेंडेंट वेरिएबल जो होता है वो डिपेंड करता है ऑन द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. फिर हम लोगों ने कुछ बात करी थी नॉन एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स की. ये तो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक थी जो अभी इंडिपेंडेंट नॉन इंडिपेंडेंट वेरिएबल था. नॉन एक्सपेरिमेंट इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल था, दैट इज़ अ एक्सपेरिमेंटल टेक्निक टू कंडक्ट द स्टडीज. नॉन एक्सपेरिमेंटल स्टडीज़ में हम लोगों ने बात करी थी जिसमें हम डिस्क्राइब करते हैं फिनोमेना, जैसे कि मैंने बोला ऑब्जर्वेशन लो, अगर आप केस स्टडी ले लो, इंट्रोस्पेक्शन ले लो, ये नॉन एक्सपेरिमेंटल मेथड्स हैं. फिर हम लोगों ने बात करी थी कि कुछ टूल्स जो हम लोग यूज़ करते हैं टू कलेक्ट डेटा, जैसा कि क्वेश्चनियर हो गया, इंटरव्यू हो गया, या साइकोमेट्रिक टेस्टिंग हो गया, या प्रोजेक्टिव टेक्निक्स हो गया. और अभी हमने लास्टली बात करी स्टैटिस्टिक्स की, जिसमें हमने डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक्स और इन्फ्रेंशियल स्टैटिस्टिक्स की बात करी. देखिए आज हम लोग जो हमारा नेक्स्ट लेसन है इसमें वो है लेसन नंबर 3, बायोलॉजिकल एंड कल्चरल शेपिंग ऑफ माइंड एंड बिहेवियर. अब जैसे कि इस लेसन का नाम है, तो सबसे पहले जैसे हम लोग साइकोलॉजी में बात करते हैं बिहेवियर, इंडिविजुअल, साइकी, मेंटल प्रोसेसेस, बट इन सब का एक बेसिस है, वो बेसिस है आपका बायोलॉजिकल शेपिंग ऑफ माइंड एंड कल्चरल शेपिंग ऑफ माइंड, कि आपका बायोलॉजी क्या है माइंड का, किस तरह से जो है हमारा जो है ब्रेन एक्ट करता है, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड किस तरह से एक्ट करता है, और इसका क्या इफेक्ट होता है हमारे बिहेवियर पे. कई बार जो हॉर्मोन्स रिलीज होते हैं, कई बार कहते हैं कि अगर आपका मूड बहुत ख़राब रहता है तो कहीं ना कहीं आपकी बायोलॉजी का भी इसमें रोल रहता है. जैसे आपके अगर हॉर्मोन्स किस तरह के रिलीज़ हो रहे हैं तो वो आपके मूड पे इफ़ेक्ट करते हैं. कभी आप बहुत हैप्पी होते हो, कभी आप बहुत लो होते हो. इसलिए कई बार देखा गया है कि जो डिप्रेशन के पेशेंट्स हैं उनको किस तरह की मेडिसिन जो हैं वो दी जाती हैं हॉर्मोन लेवल को बैलेंस करने के लिए. और दूसरा, हम लोग सब लोगों से, हम लोग का एक ही जैसा फीचर, मतलब दी आईज एंड ईयर्स एंड नोज एंड लिप्स ऑल आर द सेम, बट स्टिल वी डिफर फ्रॉम ईच अदर. ऐसा क्यों है? बिकॉज देयर दी जीन्स हैज़ अ रोल टू प्ले, एनवायरमेंट हैज़ अ रोल टू प्ले इन व्हाट वी आर एंड हाउ वी एक्ट. तो इन सब चीज़ों के बारे में ही हम लोग जो हैं एक्चुअली में आज बात करेंगे, जिसमें सबसे पहले मैं बात करूँगी एवोल्यूशन, हेरिडिटी और एनवायरमेंट की, कि एवोल्यूशन क्या है, हेरिडिट्री का क्या इफेक्ट होता है हम पे, वो हम कैसे जीन्स जो है अपने ऊपर लेते हैं, और एनवायरमेंट क्या है. अब अगर हम सबसे पहले बात करें ह्यूमन बीइंग्स की, तो ह्यूमन बीइंग्स या फिर जो भी इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, जो कोई भी हमारे सराउंडिंग में है, वो सब लोग जो हैं एक्सपर्ट्स जो हैं बायोलॉजी में बिलीव करते हैं कि जो ऑर्गेनिजम्स आज एग्जिस्ट कर रहे हैं वो एग्जिस्ट कर रहे हैं बिकॉज ऑफ द आउटकम्स और द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन. और ये एवोल्यूशन जो है वो बहुत मिलियन ईयर्स से जो है वो चलता आ रहा है. एवोल्यूशन की बात जो थी वो सबसे पहले चार्ल्स डार्विन ने की थी, और अकॉर्डिंग टू दिस व्यू विच इज़ अडेप्टेशन, उन्होंने कहा कि एवोल्यूशन में क्या होता है कि फिजिकल स्ट्रक्चर और पैटर्न ऑफ बिहेवियर जो है फाउंड टूडे इज़ अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ एवोल्यूशनरी हिस्ट्री. जो चीज़ को हम अडेप्ट कर पाए वो चीज़ ने हमको हेल्प किया आगे बढ़ने में, जिसको नहीं कर पाए वो कहीं जो था वो रह गया. तो जो व्यू ऑफ अडेप्टेशन है वो ज़्यादा सबसे मेन बात है अगर हम एवोल्यूशन की बात करते हैं. हमारे जो भी ट्रेट्स ऑफ बिहेवियर्स हैं जो हमें हेल्प करते हैं सर्वाइव करने में, वो हमेशा हमारे साथ रिटेन रहते हैं. जो सर्वाइव करने में हेल्प नहीं करते हैं वो बिहेवियर्स जो हैं वो एक्सटिंग्विश जो है वो ख़त्म हो जाते हैं. और इसे कहते हैं प्रोसेस ऑफ नेचुरल सिलेक्शन. जैसे कि कुछ चीज़ें जो थी, अभी भी आप देखो कि आज के ज़माना कैसे बदलता जा रहा है, बहुत बदलता जा रहा है, चीज़ें कितनी बदलती जा रही हैं. आज से 50 साल पहले का इंडिया और आज का इंडिया, उसमें कितना फ़र्क है. आप 50 ईयर्स पहले के बारे में सोचना छोड़ दो, आप अगर आज से 18 ईयर्स पहले के इंडिया के बारे में बात करो, जब लोग इतने टेक सेवी नहीं थे, जब इतना मोबाइल का इम्पैक्ट नहीं था तो हम लोग कैसे थे और आज हम लोग कैसे। आज से कम 18-19-20 साल पहले ही जो है ये मोबाइल का ज़्यादा ट्रेंड जो है वो आने लगा। तो जो चीज़ें जो है हमको अडेप्ट करने में हेल्प करती हैं वो हमारे साथ चलती हैं, जो हेल्प नहीं करती हैं वो एक्सटिंग्विश होती जाती हैं। और अगर आप आज के वर्ल्ड में आज की चीज़ों के साथ अडेप्ट नहीं कर पाते हो तो सर्वाइव करना मुश्किल होता है। इसलिए कहते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, अगर आज के समय में अगर आप कहीं पढ़ाने भी जाते हो या कहीं पे भी जाते हो तो कंप्यूटर्स का बहुत डिमांड होता है कि आप किस तरह से अपने अपने चीज़ को प्रेजेंट कर सकते हैं ऑन अ कंप्यूटर। तो इट हैज़ बिकम वेरी नेसेसरी फॉर एवरीवन टू नो दी हैक ऑफ यू नो कंप्यूटिंग। उनको पता होना चाहिए कि किस तरह से हम कंप्यूटर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो नहीं कर पाते हैं उनको कहीं ना कहीं कुछ चैलेंजेस को जो है वो फेस करना पड़ता है। अब हम लोग एक बात करेंगे कि वैसे तो सभी जो स्पीशीज़ हैं वो थ्रू द प्रोसेस ऑफ एवोल्यूशन आ रहे हैं, लेकिन ह्यूमन बीइंग्स जो है वो बाकी स्पीशीज़ से कैसे अलग है। तो उसमें हम तीन बातों की मेनली बात करते हैं। एक है बायपेडलिज्म, जिसका मतलब है द एबिलिटी टू स्टैंड अपराइट। हम अपने पाँव पे खड़े हो सकते हैं, बाकी कोई ऑर्गेनिजम्स ऐसे अपराइट खड़े नहीं हो सकते, वो जैसे चार टांगों पे वो लोग चलते हैं। दूसरा आता है हमारा एंसेफलाइजेशन, विच मीन्स एंसेफलाइजेशन का मतलब होता है कि आपका इंक्रीज इन ब्रेन साइज और कुछ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स पे और लोकेशंस पे जो है वो ज़्यादा स्पेशलाइज्ड बन जाते हैं कुछ ब्रेन एरियाज। और तीसरा जो आता है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, विच इज़ द डिवेलपमेंट ऑफ लैंग्वेज। वी कैन कम्युनिकेट वेल विद ईच अदर। हम लोग किस तरह से लैंग्वेज से कम्युनिकेट करके जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो दिस इज़ एवोल्यूशन, हेरिडिट्री एंड एनवायरमेंट। एवोल्यूशन से हम लोग कैसे इवॉल्व हुए, अब हमारा हेरिडिटी का एक जो है इफ़ेक्ट रहता है। मैं कौन सा जीन्स अपने पेरेंट्स से लेती हूँ, चाहे वो पढ़ाई करने का है, चाहे वो मेरे फेशियल फीचर्स का है, चाहे वो मेहनत करने का है, चाहे वो लोगों के साथ इंटरेक्ट करने का है। तो देर इज़ समथिंग दैट वी इनहेरिट फ्रॉम आर फैमिली, तो वो इनहेरिटेंस में चलता है। उसमें भी हम लोग ये देखते हैं कि जो चीज़ें जो सर्वाइव करने में हेल्प करती हैं वो तो आगे ग्रो करती जाती हैं, लेकिन जो हमारी हेरिडिट्री से जो चीज़ें हमें सर्वाइव करने में हेल्प नहीं कर रही हैं वो चीज़ें एक्सटिंग्विश होती जाती हैं। मे बी उसका आप कोई भी जो है एग्जाम्पल ले सकते हो, जैसे कि पुराने ज़माने में जो लोग थे वो मनी ऑर्डर और इनलैंड लेटर्स और इन सब पे वो करते थे, लेकिन आजकल तो मेल्स चल पड़ा है, मेल्स है, व्हाट्सएप है, ये सब कुछ है। तो हाउ आर वी चेंजिंग, एक तो हमने जीन्स लिए, दूसरा हम लोग एनवायरनमेंट की वजह से जो है वो हमेशा अपने आप को चेंज कर रहे हैं। बिकॉज वी हैव टू सर्वाइव इन द टुडेज वर्ल्ड, वी डू नॉट हैव टू गो बैक टू 50 ईयर्स बैक एंड देन वी हैव टू सर्वाइव। नो, वी आर नाउ सर्वाइविंग इन द टुडेज वर्ल्ड, एंड टू सर्वाइव इन टुडेज वर्ल्ड सम ऑफ द जीन्स दैट वी हैव इनहेरिटेड आर एक्सटिंग्विशिंग एंड सम आर हैविंग देयर इफेक्ट टू हैव अ गुड लाइफ अब इन द प्रेजेंट टाइम। कुछ चीज़ें हमें आगे बढ़ने में हेल्प कर रही हैं और जो नहीं कर रही है वो ख़त्म होती जा रही है। तो ये तो है हमारा एवोल्यूशन, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, कैसे हम एवोल्यूशन को डिफाइन करते हैं, हेरिडिटी का क्या इफ़ेक्ट होता है और एनवायरनमेंट का क्या इफ़ेक्ट होता है उसकी हम लोग बात करते हैं।
जी मैम, यहाँ पर एक सवाल आता है कि हम एवोल्यूशन, हेरिडिटरी और एनवायरनमेंट को समझ कैसे सकते हैं।
यही जो मैंने आपको अभी बताया कि एवोल्यूशन, हेरिडिटरी और एनवायरनमेंट की हम कैसे, एवोल्यूशन की थ्योरी वाज गिवन बाय चार्ल्स डार्विन। उन्होंने बताया था कि नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है, जो चीज़ आपको विच विल हेल्प यू और विच इज़ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट विल गो ऑन एंड मूव ऑन, एंड विच इज़ नॉट देयर दैट विल गेट एक्सटिंग्विश्ड। वी आर inheriting some genes from our parents, the genes that are helping us are getting you know वो हम pass on कर रहे हैं genes to the generations, जो नहीं कर रहे हैं वो extinguish हो रहे हैं। बाकी जैसे हमने बताया कि हम how we are different than the other individuals, ठीक है, तो इसी तरह से हम लोग इस चीज़ को
मैम हम चाहेंगे कि हमारे शिक्षार्थियों श्रोताओं को बताएं कि सेल्स एंड न्यूरॉन्स क्या होते हैं।
देखिए, सेल और न्यूरॉन्स का अगर हम बात करें तो जैसे बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं, ठीक है। अब अगर आप बात करें कि एक बिल्डिंग कैसे बनती है, तो आपने देखा होगा ब्रिक बाय ब्रिक बनता है, ठीक है। उसी तरह से हमारी बॉडी जो होती है वो सेल्स से जो है वो बनी हुई होती है। तो अगर एज द ब्रिक इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ अ बिल्डिंग, जैसा ब्रिक एक स्मॉलेस्ट यूनिट है किसी बिल्डिंग का, वैसे सेल भी जो है वो हमारी बॉडी स्ट्रक्चर का जो है वो बॉडी का स्मॉलेस्ट यूनिट होता है. एवरी लिविंग बींग, वो चाहे कोई भी हो, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, ह्यूमन बींग्स हो, वो इन सभी डिफरेंट यूनिट्स और सेल्स से जो है वो बने होते हैं. डिफरेंसेज बिटवीन द सेल्स ऑफ डिफरेंट लिविंग बींग्स एज वेल एज द सेल्स इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब सभी के डिफरेंट, चाहे प्लांट्स, एनिमल्स और विद इन ह्यूमन बींग्स जो है वो सेल फॉर्मेशन स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो कहीं ना कहीं डिफरेंट होते हैं. सारे सेल, जितने भी सेल्स होते हैं वो एक फ्लूइड को कंटेन करते हैं, दैट फ्लूइड इज नोन एज द साइटोप्लाज्म एंड इट हैज अ न्यूक्लियस ऑल्सो, द सेल हैज अ न्यूक्लियस ऑल्सो एंड दीज सेल्स आर इनक्लोज्ड इन अ सेल, एक सेल मेम्ब्रेन होता है, उस सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये सेल्स जो होते हैं वो इनक्लोज्ड रहते हैं. ऑपरेशन विद द सेल्स एंड द कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस सेल मेक द लाइफ पॉसिबल. किस तरह से वो सेल्स के अंदर जो है वो एक ऑपरेशन चल रहा है, कैसे फंक्शनिंग चल रही है, उसी वजह से जो है वो हमारा लाइफ जो है वो पॉसिबल हो पाती है. अगर उसमें प्रॉब्लम आ जाती है, जैसे हम बोलते हैं कि इनको ये सेल्स जो है वो डिप्लीट कर रहे हैं, तो दैट मीन्स समथिंग इज गोइंग रॉन्ग विद द बॉडी, तो उससे हमारे लाइफ को भी जो है वो खतरा हो जाता है. तो ये तो है कि सेल्स क्या हैं. अब अगर हम न्यूरॉन्स की बात करें तो न्यूरॉन्स जो होते हैं वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स होते हैं. जो न्यूरॉन्स होते हैं, जो सेल्स होते हैं, दे कंपोज द नर्वस सिस्टम एंड दे आर कंपोज्ड ऑफ न्यूरॉन्स एंड द ग्लिया. जो न्यूरॉन्स या नर्व सेल्स जो होते हैं ट्रांसमिट करते हैं इम्पल्सेस फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर. जैसे कि हमारे ब्रेन में भी डिफरेंट सेल्स, न्यूरॉन्स हैं, तो हर एक न्यूरॉन जो है वो एक ब्रेन एरिया से दूसरे ब्रेन एरिया में जो है वो इन्फॉर्मेशन को लेके जाता है, और तभी हमें पता चलता है. जैसे मैं अभी बात कर रही हूँ आपसे, तो मेरा बात करना इज़ ऑल्सो द न्यूरॉन्स आर सेंडिंग इन्फॉर्मेशन, और ये एक्शन बहुत क्विक होता है, तभी आई एम एबल टू टॉक इन फ्रंट ऑफ यू, आई एम एबल टू लुक एट यू, आई एम एबल टू डिलीवर इट, आई एम एबल टू रीड वॉट इज़ इन फ्रंट ऑफ मी. तो दिस इज़ ऑल हैपनिंग बिकॉज ऑफ द फंक्शनिंग ऑफ दीज न्यूरॉन्स जो हमारे दिमाग में चलता है या विच इज़ एट प्ले. वो कुछ भी हो सकता है, जैसे अगर आप किसी चीज़ को एडमायर करते हो या आप किसी चीज़ को इंजॉय करते हो, दैट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द कोऑर्डिनेटेड एक्शन ऑफ द मिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स. ये जो नर्व सेल्स हैं ये कलेक्ट करते हैं इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द आउटसाइड वर्ल्ड एनवायरनमेंट से बाय मींस ऑफ रिसेप्टर्स. मतलब देर आर सम रिसीविंग सेल्स, रिसेप्टर्स से वो इन्फॉर्मेशन रिसीव करेंगे एंड देन द इन्फॉर्मेशन हेल्प्स अस टू मेक द एक्शन पॉसिबल. जो न्यूरॉन स्टोर करते हैं इन्फॉर्मेशन एंड दीज लीड टू द बिहेवियर. मैं कैसे बिहेव कर रही हूँ, कैसे नहीं कर रही हूँ, दैट डिपेंड्स अपॉन द रिसेप्टर सेल्स, वॉट इन्फॉर्मेशन आई एम रिसीविंग, हाउ दैट information is you know processed and then how do I behave. Neurons jo hote hain they make up half of the volume of the brain. Half of the volume of the brain is made up of the neurons. Glial cells जो होते हैं वो constitute करते हैं other half of the nervous system. Neurons जो होते हैं central nervous system में वो various shapes और sizes के होते हैं, लेकिन जो most neurons होते हैं उनके सारे features जो होते हैं सबके common होते हैं. Three main features रहते हैं सारे neurons के, उनमें होता है कि एक तो cell body है, dendrites हैं और axons हैं. इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि सेल बॉडी या जिसे हम सोमा भी कहते हैं वो क्या होता है. दैट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द न्यूरॉन. जो न्यूरॉन जो आपका होता है उसका सबसे बड़ा पार्ट होता है. ये रेगुलेट करता है और कंट्रोल करता है मेटाबॉलिज्म एंड मेंटेनेंस ऑफ द एंटायर सेल. ये जो आपका सोमा या सेल बॉडी होती है, इसी की वजह से सेल का जो मेटाबॉलिज्म होता है इट इज़ मेड पॉसिबल बिकॉज ऑफ द सेल बॉडी ओनली. सोमा जो होता है रिसीव करता है इन्फॉर्मेशन और इम्पल्सिस फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स. सेल बॉडी कंटेन्स अ न्यूक्लियस ऑल्सो. उसमें बीच में सेंटर में एक न्यूक्लियस होता है जो मैन्युफैक्चर करता है केमिकल्स एंड दीज केमिकल्स आर यूज टू ट्रांसमिट सिग्नल्स. अब आता है हमारे पास दूसरा जो स्ट्रक्चर इसमें आता है सेल बॉडी में, वो आता है न्यूरॉन्स में, वो आता है डेंड्राइट. डेंड्राइट क्या होता है, दे आर ब्रांचेस, ऐसे जैसे ट्री के ब्रांचेस होते हैं, दे आर ब्रांचेस दैट एक्सटेंड फ्रॉम द सेल बॉडी एंड स्प्रेड आउट इन कॉम्प्लेक्स वे. ये जो न्यूरॉन्स होते हैं जब रिसीव करते हैं इन्फॉर्मेशन या इनपुट, ये विद द हेल्प ऑफ डेंड्राइट्स ही करते हैं वाया सिनेप्टिक कनेक्शंस. जो सेल सेंड करते हैं इंफॉर्मेशन वो रिलीज करता है एक केमिकल एंड इन्फ्लुएंसेस द एक्टिविटी ऑफ द रिसीविंग सेल. हमारा थर्ड आता है विच इज़ नोन एज एन एग्जॉन. एग्जॉन का अगर आप स्ट्रक्चर देखेंगे तो वो एक लॉन्ग फाइबर जैसा होता है जो कि सेल से आगे लीड करता है सेल बॉडी से. एग्जॉन जो होता है वो सिग्नल्स सेंड करता है डेंड्राइट्स को और अदर न्यूरोन्स को और ग्लैंड्स को भी सिग्नल सेंड करता है. एग्जॉन जो दैट मेक द न्यूरल पाथवे इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. एग्जॉन्स जो होते हैं दे आर इंसुलेटेड बाय मेलिन शीथ. मेलिन शीथ जो होती है वो ग्लियल सेल से बनी हुई होती है और ये नर्व इम्पल्स को पास ऑन करने में जो है वो हेल्प करता है उसका कंडक्शन में. नर्व इम्पल्स जो होते हैं इट इज दी इंफॉर्मेशन विच एवर इंफॉर्मेशन वी हैव इज कैरिड थ्रू अ सीरीज ऑफ इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस. इलेक्ट्रिकल इम्पल्सिस केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं उसकी वजह से होता है दैट ट्रेवल फ्रॉम वन न्यूरोन टू अनदर न्यूरोन. ये न्यूरोन्स को हम लोग नर्व इम्पल्सिस इसे हम नर्व इम्पल्सिस कहते हैं जो कि इंफॉर्मेशन सेंड करती हैं एंड दे आर सेंडिंग इन्फॉर्मेशन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द ब्रेन वेयर सेंसेशंस टेक प्लेस. एग्जॉन्स और नर्व फाइबर्स डू नॉट कैरी सेंसेशंस लाइक पेन और कोल्ड. द सेंसेशन अकर ओनली व्हेन द इंफॉर्मेशन रीचेस द ब्रेन. जब इंफॉर्मेशन जो है वो ये इंफॉर्मेशन कैरी नहीं करेंगे कि बाहर से ठंड आ रही है. ये इंफॉर्मेशन तो जब हमारे ब्रेन में जो भी इंफॉर्मेशन बाहर से आई है थ्रू द न्यूरॉन्स वो जब एक बार ब्रेन में पहुंच जाएगी तो ब्रेन डिसाइड करेगा कि वेदर इट इज़ कोल्ड और हॉट. मतलब किसी कंक्लूजन पे तभी आता है जब व्हेन इट रीचेस द ब्रेन. साइनेप्सिस वो रीजन्स होते हैं जहाँ से न्यूरॉन्स जो होते हैं वो दूसरे न्यूरॉन्स के साथ कनेक्शन बनाते हैं थ्रू साइनेप्टिक क्लेफ्ट के थ्रू बनाते हैं. वहाँ पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होता है और वो किस तरह से अगले जो न्यूरॉन होता है उसके साथ कनेक्शन बनाता है तो दीज आर नोन एज साइनेप्स.
शिक्षार्थी और श्रोताओं आप सुन रहे हैं हमारा साइकोलॉजी का पाठ्यक्रम और हम चर्चा कर रहे हैं अभी आप बातें कर रहे थे सेल्स एंड न्यूरॉन्स पर. अब हम बात करेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन क्या होता है.
हाँ पहले तो हम लोग बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स कैसे होते हैं. तो न्यूरॉन्स के फंक्शन पर डिपेंड करता है कि वो किस तरह के न्यूरॉन्स हैं. कुछ होते हैं रिसेप्टर न्यूरॉन्स और कुछ होते हैं मोटर न्यूरॉन्स. रिसेप्टर न्यूरॉन्स दैट दे विल रिसीव द इन्फॉर्मेशन फ्रॉम आउटसाइड एंड मोटर न्यूरॉन्स आर जो इन्फॉर्मेशन उन्होंने रिसीव की है वो फिर अपने जो है वो नीचे रिले करेंगे कि दिस इज द एक्शन दैट हैज टू बी टेकन बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन दैट द रिसेप्टर न्यूरॉन इज टेकिंग. इस इंफॉर्मेशन को हम सेंसेस के थ्रू लाते हैं. जैसे आप देख के लाओगे सुन के लाओगे स्मेल करके लाओगे कोई भी इंफॉर्मेशन. और मोटर न्यूरॉन्स जो होते हैं वो कैरी आउट करते हैं ऑर्डर्स फ्रॉम द ब्रेन. जब एक बार रिसेप्टर न्यूरॉन्स आपके ब्रेन में इंफॉर्मेशन पहुंचा देते हैं तो मोटर न्यूरॉन्स वो इंफॉर्मेशन ब्रेन से कैरी आउट करते हैं फॉर मस्कुलर मूवमेंट के लिए. फॉर एग्जाम्पल च्यूइंग वॉकिंग राइटिंग एंड सो ऑन विच आर अंडर आर कॉन्शियस कंट्रोल दैट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ द रिसेप्टर्स एंड द मोटर न्यूरॉन्स. द रिफ्लेक्स एक्शंस आर मीडिएटेड बाय द स्पाइनल कॉर्ड. जैसे कई बार आप लोग किसी हॉट सर्फेस को टच कर लो और एकदम से अपना हाथ हटा लो रिफ्लेक्स एक्शंस. या फिर कई बार आप ब्लिंकिंग ऑफ आई करते हो दैट इज एक्चुअली जो है दैट इज मीडिएटेड बाय द स्पाइनल कॉर्ड. जैसे कि ब्रीदिंग है ब्लिंकिंग ऑफ ब्लिंकिंग आई आर इन्वॉलंटरी एक्शंस. तो ये तो है कि टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स में हम किस किस तरह से इसको डिफाइन कर सकते हैं रिसेप्टर्स और मोटर न्यूरॉन्स से.
और अब मैम हम चाहेंगे कि हमारे शिक्षार्थियों और श्रोताओं को बताएं कि स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स क्या है.
स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन्स जो अगर मैं बात करूं तो वो मैं आपसे बात कर चुकी हूं. बेसिकली वो वही है जिसमें हम लोग बात करते हैं सेल बॉडी की डेंड्राइट की एग्जॉन्स की और साइनेप्टिक क्लेफ्ट की. इसके बाद हम लोग बात करना चाहेंगे कि नर्वस सिस्टम क्या है. नर्वस सिस्टम में हम लोग बात करेंगे कि नर्वस सिस्टम जो है वो बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स से बना है एंड दैट नर्वस सिस्टम इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर रिसीविंग एंड प्रोसेसिंग द इन्फॉर्मेशन एंड सेंडिंग द इन्फॉर्मेशन. जितने भी फंक्शंस हैं हमारे बॉडी के दे आर कंट्रोल्ड बाय द नर्वस सिस्टम. नर्वस सिस्टम के दो पार्ट्स हैं एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम है और एक पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो कंसिस्ट करता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का. और जो स्पाइनल कॉर्ड की अगर हम बात करें तो वो एक नैरो कॉलम होता है जो आपके बैक से शुरू होता है एंड इट एक्सटेंड्स थ्रू द नेक एंड द बेस ऑफ द स्कल. जहाँ पे आपका स्कल खत्म होता है वहां तक ये आपका स्पाइनल कॉर्ड रहता है. जो ब्रेन होता है दैट इज सराउंडेड बाय द स्कल. जैसे आपने कभी स्ट्रक्चर ऑफ ब्रेन देखा हो तो वो एक स्कल जो बाहर होते हैं है उसके थ्रू वो सराउंडेड होता है. सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो इस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है कि उसको सेंड करना है इम्पल्सेस और रिसीव करना है सेंसरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम आउटसाइड. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की अगर हम बात करें तो इट कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ न्यूरॉन्स जो इन्फॉर्मेशन ट्रांसमिट करते हैं बिटवीन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी. दिस पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कैरिंग नर्व इम्पल्सिस टू एंड फ्रॉम द बॉडी. मतलब ये नर्व इम्पल्सिस को बॉडी की तरफ लेके भी जाता है और वहाँ से नर्व इम्पल्सिस को लेके भी आता है और हमारे को इन्फॉर्मेशन और एक्शंस को अकॉर्डिंगली बताता है. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम फर्दर सोमैटिक और जो है आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम में डिवाइडेड होता है. जो सोमैटिक सिस्टम होता है वो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को कनेक्ट करता है विद द वोलेंट्री मसल्स ऑफ द बॉडी. ये सिस्टम जो होता है दिस सिस्टम सेंसेस एंड एक्ट्स अपॉन द एक्सटर्नल वर्ल्ड. जो आपका सोमैटिक सिस्टम होता है जो एक्सटर्नल वर्ल्ड से क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है उस पर एक्ट करता है. ये आपका सेंसरी और मोटर न्यूरॉन्स दोनों से बना होता है. सेंसरी न्यूरॉन्स जो होते हैं वो ट्रांसमिट करते हैं इन्फॉर्मेशन इनकमिंग इन्फॉर्मेशन टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. ये सिग्नल्स जो होते हैं ओरिजिनेट होते हैं रिसेप्टर सेल्स में, क्योंकि मैंने कहा था रिसेप्टर सेल्स रिसीव करते हैं इन्फॉर्मेशन एंड आर लोकेटेड इन द सेंस ऑर्गन सच एज आईज एंड ईयर्स. मोटर न्यूरॉन्स जो होते हैं जिनकी सेल बॉडीज जो होती है वो स्पाइनल कॉर्ड के आसपास होती है, वो ट्रांसमिट करते हैं आउटगोइंग सिग्नल्स फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड. द सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल्स द स्केलेटल मसल्स दैट हेल्प द मूवमेंट ऑफ द बॉडी. जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम की वजह से हमारी बॉडी की मूवमेंट जो है वो कंट्रोल हो पाती है. मैं यही बताना चाहूँगी अपने शिक्षार्थियों श्रोताओं को कि इसके आगे हम थोड़ा सा बात करेंगे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम की, कि वो इनवॉलंटरी एक्शंस पे जो है वो उनको कंट्रोल करता है, जैसे कि आपका हार्ट स्टमक लीवर पे जो एक्शंस होते हैं. ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम सिंपैथेटिक और पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में आगे सब डिवाइडेड होता है. सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है वो डोमिनेट करता है इमरजेंसी सिचुएशन में, जैसे कि ये सिस्टम हमारे इमोशंस को रिस्पॉन्ड कंट्रोल करता है. जैसे कि आप जब रिस्पॉन्ड करते हैं और आपका ब्लड शुगर लेवल बढ़ता है या हार्ट रेट बढ़ता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है और आप जो प्रोसेस ऑफ डाइजेशन दिखाते हो, दैट इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ दिस सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम. ये चेंजेस जो होते हैं हमें हेल्प करते हैं टू कोप अप विद द स्ट्रेसफुल सिचुएशन. जो पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो डोमिनेट करता है रिलैक्स्ड एक्टिविटीज़ में, जैसे कि जब आपका जैसे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में आपका फाइट होता है, जैसे आप चीज़ों को फेस करते हो, आपका ब्लड लेवल बढ़ेगा, आपका हार्ट रेट बढ़ेगा, तो दैट इज़ द सोमैटिक नर्वस सिस्टम, द सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इज़ एट प्ले. लेकिन जब आप कूल डाउन हो जाते हो, थोड़ा फ्लाइट करते हो, फ्लाइट ऑफ आइडियाज होते हैं, जब थोड़ा रिलैक्स स्टेट में होते हो, तो आपका पैरासिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है दैट इज़ एट प्ले. मैं अपने शिक्षार्थियों श्रोताओं को बताना चाहूँगी कि ये लेसन जो है वो हम अपने अगले कार्यक्रम में पूरा करेंगे, जिसमें हम लोग सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करेंगे.